नमस्कार भारत, 13 अक्टूबर दिन मंगलवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही पोतने के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी। भाजपा और शिवसेना के रिश्ते में आई कड़वाहट। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य का नाम बदनाम हुआ। हंगामे और विवाद के बीच अपनी किताब के विमोचन पर खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा, वाजपेयी की नीति अपनाए मोदी।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has made a promise to the people of India about विकास।
बिहार में पहले दौर में 57% मतदान, महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा, क्या संकेत हैं इसके?
आंकड़ों के नजरियों से देखें तो महिलाओं का वोट अलग अलग पार्टियों के लिए और आज के दृष्टिकोण में जो दो अलायंसेज हैं उनके लिए बराबर बराबर बटे दिखाई पड़ते हैं।
लेकिन पहले सुनिए BBC समाचार।
BBC समाचार, अशोक कुमार से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी पर काली स्याही फेंके जाने के मामले में शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कल मुंबई में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी की किताब के विमोचन से पहले कुलकर्णी पर स्याही फेंकी गई। कसूरी कुलकर्णी के निमंत्रण पर ही भारत आए हैं, लेकिन शिवसेना उनकी किताब के विमोचन कार्यक्रम को रद्द करने की मांग कर रही थी। अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे विद्रोहियों के लिए 45 टन से ज़्यादा हथियार और गोला बारूद गिराए हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने रूस से सीरिया में अपनी कार्रवाई को तुरंत बंद करने को कहा है। लग्जमबर्ग में हुई इन विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक बयान में कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सरकार सीरिया में राष्ट्रपति असद को मदद पहुंचाने के लिए जो हवाई हमले कर रही है उससे सीरिया में संकट और लंबा हो रहा है। बैठक में मौजूद यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रभारी फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि सीरिया संकट के राजनीतिक समाधान के लिए यूरोपीय संघ संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा।
We have decided to coordinate our actions very closely. Active, daily, common work.
हमने अपने कदमों में बहुत ही नज़दीकी तालमेल कायम करने का फैसला किया है ताकि राजनीतिक प्रक्रिया में मदद मिल सके। ये राजनीतिक प्रक्रिया वहाँ सुरक्षा स्थिति से भी अधिक अहम है। हमें ऐसी प्रक्रिया शुरू करनी होगी जिससे एक राजनीतिक समाधान हासिल किया जा सके। ये थे यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रभारी मोगेरिनी के शब्द। अफगानिस्तान के शहर गजनी में भीषण लड़ाई की खबरें हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि तालिबान लड़ाकों ने प्रांतीय राजधानी पर कई दिशाओं से हमले किए। खबरों में कहा गया है कि शहर की सड़कें वीरान दिख रही हैं और बहुत से लोग अफगान राजधानी काबुल भाग गए हैं, जो गजनी से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। 2 हफ्ते पहले कुंदूज में भी इसी तरह से हमला किया गया था। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि आपराधिक गुट यूरोप में प्रवासी संकट का फायदा उठा रहे हैं और नकली पासपोर्ट और पहचान पत्रों के लिए लोगों से हजारों डॉलर ठग रहे हैं। BBC की एक जांच में पता चला है कि ग्रीस की राजधानी एथेंस में 3,000 से 4,000 डॉलर में ऐसे फर्जी दस्तावेज बेचे जा रहे हैं जिनके आधार पर जर्मनी या फिर स्वीडन में प्रवेश दिलाने का वादा किया जा रहा है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना में पुलिस और हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारी एक विपक्षी नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिन्हें पिछले हफ्ते संसद भवन में आंसू गैस छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। BBC समाचार।
तारीख 13 अक्टूबर दिन मंगलवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही पोते जाने के मामले में शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी की किताब के विमोचन को लेकर कल सुबह से ही हंगामा चलता रहा और फिर खूब बयानबाजी हुई। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आप किसी की राय से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब एक विदेशी राजनयिक वैध वीजा पर आता है और कार्यक्रम करता है तो वो गैर कानूनी नहीं, इसलिए राज्य का ये कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा दी जाए। जो भी हुआ उससे राज्य का नाम बदनाम हुआ है। अपने विचार रखने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन शिवसेना के विरोध के बावजूद कसूरी की किताब का विमोचन हुआ। किताब के विमोचन पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति पर चलने की सलाह दे डाली। रिपोर्ट के साथ हैं निखिल रंजन।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति अपनाएं। कसूरी का दावा है कि अटल की राह पर चलकर ही मोदी भारत के लोगों से किए वादे पूरे कर सकते हैं। उन्होंने कहा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकास को लेकर वादा किया है, ये सही बात है। लेकिन इतिहास और आधुनिक अर्थशास्त्र के बारे में जितना मुझे पता है कि इसके लिए शांति ज़रूरी है। इस तथ्य के आधार पर मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये महसूस करेंगे कि वाजपेयी का रास्ता सही रास्ता था। ये मुझे भरोसा है।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी के शब्द। वो अपनी किताब नीदर ए हॉक नॉर ए डव के मुंबई में हुए विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। विमोचन का कार्यक्रम कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया। इसकी वजह ये थी कि शिवसेना इस कार्यक्रम का विरोध कर रही थी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम पर विरोध जाहिर करने के लिए आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोत दी। हालांकि कुलकर्णी इसके बाद भी कार्यक्रम रद्द करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा,
उन्होंने धमकी दी थी कि शिवसेना स्टाइल में हमारे प्रोग्राम को वो डिस्टर्ब करेंगे।
शिवसेना कार्यकर्ताओं की कार्रवाई का कांग्रेस समेत कई दलों ने विरोध किया। हालांकि शिवसेना अपने विरोध को सही ठहराती रही। शिवसेना नेता संजय राउत ने मीडिया से कहा,
यही कसूरी है कि विदेश मंत्री जब थे तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल जी को आर पार की लड़ाई की भाषा करनी पड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को मुंबई में रेड कारपेट डालकर स्वागत करना हमारे देश की भावना के खिलाफ है, एक प्रकार से देशद्रोह है।
शिवसेना के विरोध को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कसूरी की किताब विमोचन के कार्यक्रम में कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई। कसूरी ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार जताया। किताब लॉन्च के मौके पर लेखक एजी नूरानी, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पटगांवकर मौजूद थे।
इस समय मुंबई से टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी। अनुराग, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि कल की जो घटनाएं हुई हैं उससे क्या सत्तारूढ़ गठबंधन के जो प्रमुख दल हैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, इनके बीच रिश्ते को आप कैसे देख रहे हैं आप?
मैं मानता हूँ कि इन दोनों के रिश्ते काफी दिनों से कड़वाहट भरे हैं, और उद्धव ठाकरे जो है वो भी एक बहुत कड़ी लाइन ले चुके हैं कि अब भाजपा के साथ में, वो इस मौके की तलाश कर रहे हैं कि ये रिश्ता कब टूट जाए, और उसी की ये तलाश का यही उसकी ही ये कड़ी थी।
अनुराग, ये बताइए कि जो गिरफ्तारी भी हुई शिवसेना के कार्यकर्ताओं की, और जो फडणवीस साहब का बयान जो है काफी कड़ा बयान है, जब उन्होंने ये कहा कि राज्य का नाम बदनाम हुआ है, कोई सुलह सफाई की गुंजाइश दिखती है क्या?
अभी जो रिश्ते हैं वो बहुत कड़वाहट भरे तो हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वो चल रहे हैं, क्योंकि जो शिवसेना के जो मंत्री हैं उनको भी अधिकार नहीं मिले हुए हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है, उनके निर्णयों को पलट दिया जाता है, और वो एक जो मंत्री जो कि शिवसेना से जुड़े हुए हैं उनके विभाग सारे नौकरशाही चलाती है। इस तरीके से लगता है कि ये बहुत जल्दी ही ये रिश्ता समाप्त हो जाएगा, लेकिन शिवसेना समय का इंतजार कर रही है।
लेकिन अनुराग, ये बताइए कि सरकार फिर कैसे चलेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार चलाना फिर।
मुझे लगता है कि मुझे संभावना लगती है कि कुछ ही महीनों बाद या 6 महीने बाद मध्यावधि चुनाव राजनीतिक पटल पर दिखाई दे रहे हैं।
अच्छा, ये बताइए अनुराग कि जो एक सिविक पोल्स भी होने जा रहे हैं राज्य में, उसके लिए भी कोई गठबंधन की बात चल रही थी शिवसेना और भाजपा में, तो उस पर कितना असर देख रहे हैं आप?
मुंबई महानगर पालिका, आप जानते हैं कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, उसका बजट जो है वो भारत के जो पूर्वांचल के जो 7 राज्य हैं उनसे भी ज्यादा है, और शिवसेना शुरू से ही उन चुनावों को एकदम अपने जन मरण का मानती है, क्योंकि उसके लिए वो ऑक्सीजन है। इस कारण शिवसेना, और दूसरी बात ये हुई है कि जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी एक भी नगर पालिका का चुनाव नहीं जीत पाई है, जिला परिषद के चुनाव भी हार गई है, तो शिवसेना को लगता है कि उस वो विरोध की भूमिका निभा रही है तो उसके पास ताकत है, और इसलिए वो शायद जैसे कल्याण डोंबिवली में भी वो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, नवी मुंबई में भी अलग अलग लड़े, और सभी जगह दोनों ही गठबंधन हार गए,
तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, हमारे पास थोड़ी समय की कमी है। ये थे मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी, जो बता रहे थे कि कल के घटनाक्रम के बाद गठबंधन के दोनों प्रमुख दल में के रिश्तों में आ गई है कड़वाहट। इस बीच बुकर पुरस्कार विजेता और जाने माने लेखक सलमान रुश्दी ने कहा है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए ये मुश्किल समय है। उन्होंने भारत में साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों का समर्थन भी किया है। रुश्दी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाली नयन तारा सहगल और अन्य लेखकों का भी समर्थन किया। भारत में हाल के दिनों में कई लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों और दादरी कांड के विरोध में सबसे पहले नयन तारा सहगल ने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया था। उसके बाद से कई साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार लौटाए हैं। इन लेखकों ने ऐसे मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। और अब चर्चा बिहार की। बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस दौर में 57% मतदान हुआ। आयोग ने इन आंकड़ों को ऐतिहासिक बताया है, क्योंकि वर्ष 2010 में इन क्षेत्रों में 50% से कुछ ज्यादा ही मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण के मतदान के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। इस दौर में 59.5% महिलाओं ने मतदान किया, वहीं 54.5% के साथ पुरुष पीछे रह गए। पहले चरण में 10 जिलों में 49 सीटों पर मतदान हुआ। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
कल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक ओर समस्तीपुर जिले के दियारा इलाके में लोग घोड़े और हाथियों पर चढ़कर मतदान करने पहुंचे, तो दूसरी ओर बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में 108 साल की महारानी देवी भी वोट डालने पहुंची। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में कुल 57% मतदान हुआ। मतदान का सबसे ज्यादा प्रतिशत खगड़िया जिले में 61%, तो सबसे कम नवादा में 53% रहा। मतदान खत्म होने के बाद दिल्ली में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्य चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने मतदान के खास पहलुओं के बारे में बताया।
इस चरण का मतदान बहुत उत्साहवर्धक है। पिछले चुनाव में यहां मतदान 50.85% था। इस बार अब तक मिली सूचना के मुताबिक 57% मतदान हुआ है। इस बार की खास बात ये रही कि महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान में हिस्सा लिया। पुरुषों का मतदान जहां 54.5% रहा, वहीं महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.5% के आसपास दर्ज किया गया। वहीं चुनाव बहिष्कार के 9 मामले सामने आए हैं।
सूबे में जिन दो गठबंधनों NDA और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, उन दोनों ने ही मतदान के बाद जीत के अपने अपने दावे किए हैं। भाजपा का दावा है कि NDA 49 में से 36 सीटें जीतेगी। भाजपा प्रवक्ता संजय मयूख कहते हैं,
ये राज्य सरकार के खिलाफ मतदान है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हुआ मतदान है या सबका साथ सबके विकास को सहमति है बिहार की आम जनता का।
वहीं महागठबंधन का कहना है कि उसके सीटों की संख्या 2010 के मुकाबले बढ़ेगी। 2010 में महागठबंधन में शामिल दलों को 49 में से 32 सीटों पर जीत मिली थी। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का दावा है,
गठबंधन होने के बाद में जिस तरह से गुटबंदी हुई है पिछड़ों से पिछड़ों में दलित और महादलितों में, एकीकरण का जो एक प्रकटीकरण का भाव है, ये रुझान जो है ये अस्पष्ट महागठबंधन की ओर जा रहा है।
बिहार चुनाव में अभी और 4 चरणों का मतदान बाकी है। अगले यानी दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार 16 अक्टूबर को होगा। मनीष शांडिल्य, PBC पटना।
बिहार के 10 जिलों के मतदाता अपना फैसला EVM में कैद कर चुके हैं। फैसला किसके हक में गया है ये तब पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। अभी आंकड़ों को लेकर अनुमान लगाने का दौर जारी है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार से बात की और पूछा कि इन आंकड़ों से क्या संकेत मिलते हैं।
इसके संकेत बहुत स्पष्ट हैं। मतदाता पहले की तुलना में आज ज्यादा उत्साहित हैं वोट देने के लिए। वो बढ़ चढ़ करके वोट दे रहे हैं चुनाव में, उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है।
पहले चरणों की बात करें, करीब 60% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि पुरुषों की संख्या 54.5% रही है। इसे आप किस तरह से देखते हैं?
ये भी एक पुराना जो ट्रेंड है उसी का कंटिन्यूएशन है। 2010 के विधानसभा चुनाव में पहली बार बिहार में ऐसा हुआ जब महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था पिछले चुनाव की तुलना में, क्योंकि लगातार पिछले 20-25-30-40-50 सालों में बिहार में और अन्य राज्यों में भी ऐसा होता रहा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत कम रहता था। अब सवाल ये है कि क्या ये महिलाओं की ज्यादा भागीदारी किसी खास पार्टी को फेवर करती है? ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आंकड़ों के नजरियों से देखें तो महिलाओं का वोट अलग अलग पार्टियों के लिए और आज के दृष्टिकोण में जो दो अलायंसेज हैं उनके लिए बराबर बराबर बटे दिखाई पड़ते हैं।
आपको कोई संकेत इससे मिलता है इन आंकड़ों से कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है उससे किसी राजनीतिक दल को फायदा हो सकता है?
एक आम धारणा बनती है कि अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो उसको लोग एक एंटी इनकम्बेंसी के तौर पे देखते हैं। ये मानते हैं कि लोग जो सरकार है वर्तमान सरकार से शायद ऊब गई है और उस सरकार को हटाने के लिए नई सरकार लाने के लिए लोग बड़ी संख्या में निकल के आए हैं। लेकिन इस धारणा की पुष्टि आंकड़ों से नहीं होती है। लेकिन हाँ ये जरूर है पिछले एक साल में कुछ बदलाव दिखाई पड़ा और खासकर 2014 के लोकसभा के चुनाव में बदलाव दिखाई पड़ा। वो ये स्पष्ट था जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़ा वहां बीजेपी जो उस समय विपक्ष की पार्टी थी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती। कुछ संकेत मिलते हैं इन चुनाव में भी कि अगर मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़ रहा है तो शायद यह विपक्ष की पार्टी जो अभी विपक्ष में है भाजपा और उनके गठबंधन शायद उसको यह फायदा पहुंचाए।
जी संजय जी, पहले चरण का जो मतदान हुआ है जो आंकड़े आपके सामने हैं उसके लिहाज से आगे के चरण के लिए क्या कोई संकेत आपको मिलता है?
निश्चित रूप से ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि हर चरण में हम पिछले चुनावों की तुलना में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखेंगे। लोगों का उत्साह चुनाव के प्रति बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा।
बिहार में पहले दौर के मतदान के ठीक पहले एक स्टिंग सामने आया जिसे लेकर जनता दल यूनाइटेड के एक मंत्री अवधेश कुशवाहा और राष्ट्रीय जनता दल के दो उम्मीदवार मुंद्रिका प्रसाद यादव और सूबेदार दास आरोपों के घेरे में आ गए। जेडीयू ने मंत्री से तुरंत इस्तीफा ले लिया लेकिन आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वात्सल्य राय ने आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा से बात की और पूछा कि क्या उनकी पार्टी ने स्टिंग को अनदेखा कर दिया है।
मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहूँ जदयू का जो मामला था वो अवधेश सिंह कुशवाहा वो मंत्री थे और उनके स्टिंग का नेचर अलग था। जो स्टिंग सामने आया है हम लगातार कह रहे हैं आप इसकी निष्पक्ष और त्वरित जांच करवाइए। जो भी एजेंसी चुनना चाहे चुन लीजिए, त्वरित जांच आएगी, सत्य सामने आएगा, हम निर्णय लेंगे, कठोर से कठोर निर्णय लेंगे। लेकिन हमारे लिए एक और पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही हमने माननीय सुशील कुमार मोदी जी जो भाजपा के नेता है राज्य के उनके खिलाफ एक दरखास्त दी है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने लालू जी के ट्विटर को माफ किया, उनके मैसेज को माफ किया। तो इस दल की हरकतों से भी हम थोड़ा परेशान हैं। एक दल जो कि पिछड़ों दलितों की गोलबंदी से हताश होकर के इस तरह के निर्णय ले कि ट्विटर को माफ करे, फेसबुक अकाउंट को माफ करे, इसलिए हमारा मानना है कि इस स्कीम की पड़ताल की आवश्यकता है। और पड़ताल के बाद अगर निष्पक्ष अप्रभावित जांच के बाद अगर सत्य सामने आएगा और ये दोषी पाए जाएंगे मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ हम कठोर से कठोर निर्णय लेंगे जो सार्वजनिक जीवन में एक नए मानदंड स्थापित करेगा।
लेकिन जिस तरह से ये सवाल उठा, आरोप लगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक प्रधानमंत्री ने भी इस स्टिंग का जिक्र किया तो उससे आपको लगता नहीं कि पार्टी की इमेज पर कोई असर होगा?
हमारा सिर्फ ये मानना है कि हमारी छवि खराब तब होगी जब हम निर्णय ना लेने इस पक्ष जांच के बाद। हमें इतना तो मौका दीजिए, जिस एजेंसी से चाहे अनुसंधान करवा लीजिए, लेकिन स्टिंग और स्टिंग में ये इस दल को तो महारत हासिल है, मॉर्फिंग में इस दल को महारत हासिल है जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं। और इनकी दिक्कत है कि हमारा विरोध ये चुनावी दर्शन से नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम से नहीं करते हैं बल्कि इस तरह की चीजों से करते हैं।
जो दोनों नेता हैं जिनके नाम आए हैं उनमें से एक पूर्व मंत्री हैं तो क्या पार्टी ने इन लोगों को बुलाकर इनसे बात की है?
देखिए आपको साफ तौर पर कहूँ पार्टी ने संज्ञान में लिया है लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरह हम अपना अनुसंधान करें। हम चाहते हैं कि जो भी जांच की एजेंसियां हैं वो अनुसंधान करें। एक दिन पहले चुनाव के ये पिंग आता है क्या हम नहीं समझते हैं? इसकी टाइमिंग का भी कोई महत्व है?
जी मनोज जी, जहां तक निर्णय की बात है तो पहले चरण के लिए मतदाताओं ने अपना निर्णय बंद कर दिया है, ईवीएम के अंदर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्या उम्मीद आपको नजर आती है?
मैं बताऊं कि मेरी उम्मीद बिहार की उम्मीद से बनी हुई है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह के 1995 के बाद दलितों, पिछड़ों और सवर्ण गरीबों और अकलियतों की ऐसी गोलबंदी कभी नहीं देखी। न जाने कौन सा एक उत्साह का संचार हो रहा, न जाने विमर्श का क्या एक ऊंचाई विमर्श पे ऊंचाई का विमर्श है। इस सामाजिक न्याय के साथ विकास ये लोगों की जुबान पे आ गया है। हर इंसान वो मैं सिर्फ अपनी पार्टी को क्रेडिट नहीं दूंगा या जदयू को या कांग्रेस को नहीं, एक विमर्श जो बिहार के अंदर से आया है ना, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से हम कम से कम 38 से 40 सीट जीतेंगे।
बिहार चुनाव पर हमने एक विशेष सीरीज बूझिए ना बिहार को शुरू की है। इस सीरीज में हम आपको अगले कुछ दिनों तक राज्य से जुड़े मिथकों और तथ्यों के बारे में बताते रहेंगे। पहली कड़ी में जानिए कि क्या लालू प्रसाद यादव ही यादवों के सर्वमान्य नेता हैं।
बूझिए ना बिहार को सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल,
क्या लालू यादव यादवों के सर्वमान्य नेता है?
अगर आज के दृष्टिकोण से देखें तो ये सही लगता है। इन चुनाव में ऐसा प्रतीत होता है कि लालू यादव को सिर्फ यादवों का ही वोट मिल रहा है।
लेकिन क्या ये स्थिति हमेशा से ऐसी ही थी?
जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने बिहार के 1990 के चुनाव के समय, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय लालू यादव बड़े लोकप्रिय नेता थे। चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्हें हर वर्ग हर समुदाय के लोग चाहते थे कि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय लालू यादव की लोकप्रियता कहीं ज़्यादा थी आज के बजाय। तो लालू यादव जो एक समय बिहार के बहुत लोकप्रिय नेता थे, सभी लोग उनकी लोकप्रियता में उनकी हिस्सेदारी थी, आज लालू यादव की लोकप्रियता नीचे गिर गई है।
आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो,
अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो इन चुनाव में सिर्फ मात्र कोई 12-13% लोग ही चाहते हैं कि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, जबकि 90 के दशक में ऐसा नहीं था। 90 के दशक में लगभग 40-45% लोग लालू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। तो बहुत बड़ी गिरावट है लालू यादव की लोकप्रियता में पिछले 20-25 सालों में।
बूझिए ना बिहार को। दुनिया की बड़ी खबरें बीबीसी के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर बीबीसी दुनिया, ईटीवी नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है बीबीसी दुनिया, मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं,
अब पीना की मची
मैं उससे बात करने में बहुत मजा आता है।
तो देखना मत भूलिए बीबीसी दुनिया शाम 9:20 पर ईटीवी के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। बीबीसी दुनिया।
और चलिए अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी।
भारत के सुप्रीम कोर्ट में आज महिला वकीलों के एक संघ की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हो सकती है, जिसमें सभी पोर्न वेबसाइटों पर रोक लगाने की मांग की गई है। उधर बिहार में कल पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिन के दौरे पर इसराइल में हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम क्षेत्रों में सहयोग के समझौते होने की उम्मीद है। ब्रिटेन में आज प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार मैन बुकर प्राइज के विजेता की घोषणा होगी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में आज जाने माने लेखक सलमान रुश्दी बोलने वाले हैं। अपनी किताब द सैटेनिक वर्सेज को लेकर मुसलमान संगठनों का विरोध झेलने वाले रुश्दी के विरोध में ईरान ने फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले का बहिष्कार किया है। और उधर खेलों में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में आज पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से होगा।
और अब समय है एक विशेष रिपोर्ट का। स्वराज अभियान के तहत चल रही संवेदना यात्रा के अगले चरण में बीबीसी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के कौशाम्बी जिले के गांव बिला दक्षिण पहुंचा। सूखे ने बुंदेलखंड को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन इसके साथ ही यहां ये भी देखने को मिला कि आज भी लोग अपने ही कुछ गांव वालों से छुआछूत करते हैं। गांव की एक महिला ने अपनी इस परेशानी के बारे में खुलकर बात की। बीबीसी संवाददाता अजय शर्मा की रिपोर्ट।
योगेंद्र यादव सूखे के बारे में संवेदना जताने के लिए दक्षिण से उत्तर भारत के सफर पर हैं। मगर उत्तर भारत के जिले महोबा के जिस गांव में हम पहुंचे, वहां संवेदना का भी सूखा दिखाई पड़ा। बुंदेलखंड के गांव बिला दक्षिण की कमलेश और उनके पति शिवरतन पुश्तैनी तौर पर सफाई का काम करते रहे हैं, लेकिन गाँव की महिलाएं अब उन्हें छूना नहीं चाहती। कमलेश को इस बात का मलाल है कि आखिर इंसान होने के बावजूद ऐसा क्यों है।
जो ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं तो है, ये बच्चा है तो उसको पकड़ के ले जाएंगे तो उसको नवाएंगे, पानी का नारेंगे। अब हमारा नल है, दरखास्त दिया था, सरकारी लगा था, तब से हम उसको चला लेंगे तो उसकी चलाई में भी पानी भरती हैं। तो हमको बुरा नहीं लगता है साहब, हम हमारे खून नहीं है, क्या हम भोजन नहीं करते हैं, क्या नहाते नहीं हैं?
गांव में जब से सरकारी सफाई कर्मी तैनात हुए हैं तब से कमलेश और शिवरतन के पास कोई काम नहीं। उनके पास बस एक ही काम बचा है, मुनादी का, यानी गांव में किसी का आगमन, बच्चे की पैदाइश या किसी की मौत का ऐलान। इसके एवज में अगर गांववासी इन पति पत्नी को कुछ दे देते हैं तो ठीक, नहीं तो कई बार उनके घर चूल्हा जलाने को भी कुछ नहीं होता। दोनों के पास थोड़ी सी जमीन है मगर पिछले 2 साल से वो भी प्यासी है। कमलेश की छोटी बेटी बीए में है, बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और 2 लड़के बाहर काम कर रहे हैं। मुझे पता चला कि संवेदना यात्रा की मुनादी का काम भी गांव में राम रतन ने ही किया है। इसके बावजूद कमलेश को कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके पति को इसका कोई पैसा मिलेगा। गांव उन्हें अपना मानने को तैयार नहीं लगता। मैंने जब गांव की महिलाओं से पूछा कि लोग कमलेश से छुआछूत क्यों करते हैं तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं मिला। हाँ, गांव की कई महिलाएं जो इससे पहले अपने दयनीय हालात के बारे में मुझे बताने को बेताब थीं, अब मेरे इस सवाल से कन्नी काट रही थीं। बुंदेलखंड का गांव बिला दक्षिण भी दूसरे साल बारिश न होने से सूखा है। जितना चाहिए उतना पीने को पानी नहीं। गांव के 4 तालाब सूखे पड़े हैं। जानवरों को पानी पिलाने के लिए भी उन 43 हैंडपंपों का इस्तेमाल होता है जिनसे लोग पानी निकालकर खुद पीते हैं। इनमें भी पानी 150 फीट की गहराई में है। नतीजा ये कि तिल, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसल खत्म हो चुकी है। बिला दक्षिण से लौटते हुए मेरे मन में एक ही सवाल बचा रह गया है, क्या कभी कमलेश और रामरतन को सूखे हुए इस गांव के बाशिंदों से हमदर्दी की बूंदें नसीब होंगी? अजय शर्मा, BBC, गांव बिला दक्षिण, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश।
अजय शर्मा की रिपोर्ट आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइएगा। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, अशोक कुमार के साथ।
जी पंकज जी, कल की सबसे सनसनीखेज खबर थी सुधींद्र कुलकर्णी के ऊपर स्याही फेंकना और यही खबर आज के कई अखबारों की लीड है। जनसत्ता लिखता है कि रिश्तों के रंग पर शिवसेना की कालिख। कसूरी की किताब के लोकार्पण से पहले आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी पर काला पेंट फेंका गया। नवभारत टाइम्स ने इसे सुर्खी दी, शिवसेना ने पाक के विरोध में कालिख पोती। तो नई दुनिया लिखता है आडवाणी के करीबी कुलकर्णी पर शिवसेना ने कालिख पोती। वहीं हिंदुस्तान ने कसूरी के इस बयान को प्रमुखता दी है कि पाकिस्तान पर वाजपेयी की नीति सही थी और मोदी को इसी पर अमल करना चाहिए। अन्य खबरों में बिहार के पहले चरण के मतदान की खबर भी सभी अखबारों में है और मतदान 57% हुआ। हिंदुस्तान लिखता है कि 2010 के चुनावों के मुकाबले इस बार 6% ज़्यादा वोट पड़े हैं। नवभारत कहता है बिहार में पुरुषों से आगे निकल गई महिला मतदाता। एक खबर दिल्ली से जुड़ी जो कई अखबारों में है वो है दिल्ली में दाखिल होने वाले ट्रकों पर लगने वाला पर्यावरण शुल्क। हाँ जी, इसको नई दुनिया ने कहा है कि दिल्ली में एंट्री करने वाले ट्रक को 700 रुपये देने होंगे और ट्रॉले को 1300 रुपये चुकाने होंगे।
कुछ ट्रैफिक में आपको शायद राहत मिल जाए।
शायद अखबार कहता है कि प्रदूषण पर जिस तरह का सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया उसके बाद ये शुल्क लगा है। हिंदुस्तान की इस पर सुर्खी है दिल्ली में नवंबर से प्रदूषण शुल्क। दूसरी तरफ साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों का सिलसिला थम नहीं रहा है। नई दुनिया ने खबर दी है कि और 12 लेखकों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया है। साथ ही अखबार में लेखक चेतन भगत का यह बयान भी है कि पुरस्कार को लौटाना राजनीति है। लेकिन जनसत्ता ने पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों के समर्थन में आए जाने माने लेखक सलमान रुश्दी की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। और इसके साथ ही नवभारत टाइम्स में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का ये बयान भी है कि दादरी में जो घटना हुई उससे सरकार की छवि को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बिसाड़ा जैसी घटनाओं के चलते वो सपने पीछे छूट जाएंगे जो प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए देखे हैं।
और अब कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं, समय है प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी पर काली स्याही फेंके जाने के मामले में शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे विद्रोहियों के लिए 45 टन से ज़्यादा हथियार और गोला बारूद गिराए हैं। अफगानिस्तान के शहर गजनी में भीषण लड़ाई की खबरें हैं। और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि आपराधिक गुट यूरोप में प्रवासी संकट का फायदा उठा रहे हैं और लोगों से हजारों डॉलर ठग रहे हैं। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने। पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, 8 बजे विश्व भारती में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।